राम राम महाबाहु, कृष्ण कृष्ण ब्रजेश्वर, पाहि पाहि महाकष्टात् इंद्र दत्तान निजांजना। शरण में आए ब्रजवासी, क्या कहते हैं, तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया, इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है, अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो फिर गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज की तलहटी में चलें, जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान स्वयं श्रेणी ले रहे हैं रक्षा करने का कि मैं रक्षा करूंगा। क्या कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारी पूजा ली की है तो वो रक्षा भी करेंगे तुम्हारी, ऐसे थोड़ी खाली पूजा करवाते हैं। मां भैस्ते जाता द्रितटम सर्व परिकर सह वह पूजा प्रहृदायेन सरक्षाम संविधाशति। यूं कहकर श्री हरि स्वजनों के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गए और उस पर्वत को खाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। इत्युक्त्वा स्वजन सार्धम एत गोवर्धनम हरि समत्पाटे दधारात्रिम हस्तेन केन लीलया। कैसे भगवान ने उठाया गोवर्धन को, तो क्या उपमा है, जैसे बालक बिना श्रम के क्या उठाता है, गोबर छत्ता होता है बरसात में जो लकड़ी में जो पैदा होता है, क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, गोबर छत्ता, जैसे बालक उठा ले बिना किसी परिश्रम के, अथवा जैसे हाथी अपने सूंड से कमल को उठा लेता है, क्या है कमल में, क्या हाथी के लिए क्या है कमल को उठाने में क्या प्रयास, बिना प्रयास के, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री ब्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। यथोच्छलेन्द्रम शिशुरस्रमो गजा सपुष्करेण सपुष्करम गिरिम धृत्वा बभो श्री ब्रजराज नंदना कृपा करो स करुणामय प्रभु। फिर भी गोपों से बोले, हे भैया, हे बाबा, हे ब्रज बल्लभेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री संपूर्ण धन और गऊओं के साथ गिरिराज के गर्त में घुस जाओ। यही एक ऐसा स्थान है जहां इंद्र का कोई भय नहीं है। अथा है गोपान मिश्रता त्रिगर्तम हे तात मातर ब्रज वल्लभेश सोपस करे सर्व सर्वधन से गोभीर अत्र सकृत भयम न किंचन। श्री हरि का ये वचन सुनकर गोधन कुटुंब और अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में चले गए। श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों से लाठियों को लगा दिया। भगवान के हाथ में पर्वत देख करके जितने उनके सखा हैं अपनी लाठियों को उन्होंने लगा दिया सहारा देने के लिए। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता हुआ देखा भगवान ने, सोचो इतना पानी कहाँ जाएगा, तो पर्वत के नीचे जो गड्ढा है तो सब पानी तो वहीं पर आता है ना, तो फिर क्या उपाय हुआ। एक बहुत बड़ा ये संकट था कि इतना ज्यादा जो पानी था तो पर्वत के गड्ढे में जब आ रहा था तो भगवान ने क्या किया, मन ही मन सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शेष जी को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र और शेष दोनों को आदेश दिया। तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, उस पर्वत के ऊपर स्थित होकर के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जलधाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पिया। सुदर्शन चक्र पीने लगे उस पानी को पर्वत के ऊपर विराजमान चक्र तीर्थ है, वहां पर गोवर्धन परिक्रमा में एक चक्र तीर्थ मिलता है जहां के सुदर्शन चक्र जो है ना पानी को पी रहा था, करोड़ों सूर्यों के समान उसमें तेज था वो पानी को पी रहा था। और शेष नाग ने क्या किया, चारों तरफ दीवार बना दी पर्वत के चारों तरफ, एक गड्ढे में नहाए पानी उस पर्वत के नीचे शेष नाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रहती है। तो शेष जी और सुदर्शन चक्र दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे हैं इस समय जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। गोवर्धन धारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। फिर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ लेकर रोष से भरे हुए इंद्र ब्रज मंडल में आए। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया था कि तुम नष्ट करो ब्रज को और मैं आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे चलो। तो इंद्र आए बहुत गुस्से में। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की कोशिश की। इंद्र के पास वज्र है ना, है वज्र, तो वो तो पर्वत को भी जो है ना चूर्ण कर देता है ना। तो इंद्र ने वज्र छोड़ा कि ये पर्वत से जो रक्षा हो रही है ब्रजवासियों की, इस पर्वत को मैं क्या कर दूंगा, चूर्ण कर दूंगा। किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। लो चलाओ वज्र। इंद्र को क्या कर दिया भगवान ने, भुजा को क्या कर दिया, स्तंभित। स्तंभित माने खंभा जैसा, अब हिला नहीं सकता है, क्या चलाएगा वज्र, स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे। हाथी को बड़ा घमंड रहता है अपने बल का, और शेर चोट मार दे तो फिर हाथी उल्टा भागता है। तो इंद्र जो है ना आप उल्टा भागे। उसी प्रकार वे सांबर तक मेघों और देवताओं के साथ सहसा भागने लगे इंद्र। उस समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया और पृथ्वी में कीचड़ का नाम भी नहीं था। इतना पानी बरसा रहा लेकिन जमीन में कीचड़ का एक नाम भी नहीं था, जरा भी कीचड़ नहीं। देखिए भगवान की कैसी व्यवस्था। आकाश निर्मल होगा हो गया और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। हरिणोक्ता सदा गोपा निर्योर गिरी गर्त तहा सम संधनम गोधनम चा समादाय शने शने। उसके बाद गोवर्धन धारी ने अपने सखाओं से कहा तुम लोग भी निकलो। तो सखा आपने लाठी लगाई थी ना, तो भगवान कहते हैं तुम लोग निकलो गोवर्धन से बाहर। तो वे बोले नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं। कृष्ण के सखा कहते हैं तुम ही निकल जाओ। कृष्ण से कहते तुम निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख गोवर्धनधारी श्री हरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। आधा भार डाल दिया। यदि वादय परान गोपान गोवर्धन धरो हरि तदर्थम च गिरेर भारम प्रादात्ते भ्यो महामनम पतितास्तेन भारेण गोप्य बालाश्च निर्बलम। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। पूरा भार थोड़ी छोड़ा भगवान ने, आधा भार छोड़ा था उसी में ही गिर गए सब। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की भांति लीला पूर्वक रख दिया। करेणतान समुत्थाप्य स्वस्थाने पूर्व वंदिर सर्वेशाम पश्यताम कृष्णाम स्थापयामास लीलयाम। उस समय कृष्ण की पूजा की सब ब्रजवासियों ने 7 दिन के बाद। उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंद नंदन का पूजन किया। कैसे, गंध और अक्षत से पूजन किया, दही दूध का भोग अर्पित किया, खाओ दूध दही। कृष्ण को खिलाते हैं, इतना तुमने परिश्रम किया है लो दूध दही सब खाओ, कृष्ण को खिलाते हैं। सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। नंद यशोदा रोहिणी बलराम और सनन आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित होने शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके सब ब्रजवासी सफल मनोरथ होकर नंद नंदन के समीप गाने लगे, बजाने लगे और नाचने लगे तथा उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में खड़े प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्ध गोवर्धन धारी का यश गाने लगे। संश्लाघितं गायन वाद्य तत्परं नित्यन्ते आरण्यपय नंद नंदनम आजग्मुरेव सुगृहान् रजाकसोम हरिं पुरस्कृत्य मनोरथं गतं तदैव देवा वव्रसो प्रहर्षितां पुष्पे शुभ सुंदर नंदनोद्भवे जगुर्यशा श्री गिरिराज धारिणो गंधर्व मुख्या दिवि सिद्ध संघ। अब इंद्र जो क्षमा मांगता है भगवान से, गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। अब उन्होंने मौका निकाला, कृष्ण को जब एकांत में पाया तो इंद्र देवताओं के साथ प्रणाम करके बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्व समर्थ पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृति से परे तथा परात्पर श्रीहरि हैं, स्वर्ग के स्वामी, हे जगतपते मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्वं देव देवा परमेश्वरः प्रभु पूर्णा पुराणा पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परस्त्वं प्रकृते परो हरि मां पाहि पाहि द्युपते जगत्पते। आप 10 अवतार धारण करने वाले हैं, क्यों? धर्म की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए और वेदों की रक्षा करने के लिए आप 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंस आदि दैत्य राजों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। दशावतारो भगवान त्वमेव रक्षया धर्म गवाम श्रुतेश्च अद्य विजाता परिपूर्ण देवाम कंसादित्येन्द्र विनाशनाय। आपकी माया से जिसकी चित्त वृत्ति मोहित है, जो मत से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। तन्माया मोहित चित्त वृत्ति मदोदतम मेलन भाजनम माम पितेव पुत्रम द्युपते क्षमस्व प्रसीद देवेश जगन्निवास। ध्यान से सुनिए, इंद्र की जो स्थिति है कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इंद्र कह रहा है, हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है, गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है, गोपालों के पति गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है, करुणा की निधि जगत के विधाता विश्व मंगलकारी तथा समस्त जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व विमोहन और करोड़ों काम देवों के भी मन को मत देने वाले हैं, उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी और नंदराज कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों के पति गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमो गोवर्धनोद्धरणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपाल पतये गोपी जन भर्त्रे गिरिगजोद्धरते करुणानिधये जगन विधये जगन मंगलाय जगन निवासाय जगन मोहनाय कोटि मन्मथ मनमथाय ब्रजभानु सुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय ते संग ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम दर्शनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते। नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इंद्र के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो क्या होगा? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं। इंद्र के द्वारा किए गए इस सूत्र का जो प्रातः काल उठकर पाठ करेगा उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न सुरभि गौ ने भगवान को स्नान कराया। सुरभि कौन? सुरभि गाय तो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन के समय। उसने अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया और क्या किया? ऐरावत जो इंद्र का हाथी है, मत्त गजराज ऐरावत ने गंगा जल से भरी हुई चार सूणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। ऐरावत की चार सूण हैं। फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वो महान पर्वत गोवर्धन हर्ष और आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर बहने लगा। देखिए क्या आश्चर्य की घटना है। गिरिराज जो है हरिदास वर्य हैं, भगवान के बहुत श्रेष्ठ सेवक हैं, ये गोवर्धन भी पिघलने लगे, बहने लगे। जब कृष्ण का अभिषेक हुआ तो आनंद से गोवर्धन भी बहने लगे, पिघलने लगे। कृष्णाभिषेक संजाते गिरिर गोवर्धनो महा द्रवीभूतो वहन राजन हर्षानंदादितस्ततः। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उस गोवर्धन के ऊपर अपना हस्त कमल रखा। उस पर्वत पर भगवान के हाथ का चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। गोवर्धन पिघल गए तो भगवान ने हाथ रखा तो भगवान के हाथ का जो छाप है वो गोवर्धन के ऊपर पड़ गया। गोवर्धन पिघल रहे थे उस समय, तो आज भी वो दिखाई पड़ता है। वो परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है, वही चरण चिन्ह भी है। गोवर्धन पिघल रहे थे तो भगवान के चरण का भी चिन्ह है और हाथ का भी चिन्ह है गोवर्धन के ऊपर। तो जहां श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा उससे वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई। ये जो मानसी गंगा है वो जानते क्या है? ऐरावत हाथी ने अपने सूर से जो आकाश गंगा का जल से भगवान को अभिषेक कराया था वो है मानसी गंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। हे नरेश्वर, सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया उससे उस पर्वत पर क्या हुआ? गोविंद कुंड प्रकट हुआ। जो गोविंद कुंड है वो क्या है? सुरभि के दूध से जो अभिषेक हुआ, जो बड़े बड़े पापों को भर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार वहां श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक पुष्प पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। हे राजन, जो श्री कृष्णाभिषेक की इस कथा को सुनता है वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान से भी पुण्य फल को पाता है। ये कथा सुनने मात्र से कितना फल मिलता है? 10 अश्वमेध यज्ञों का से ज्यादा पुण्य मिलता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। प्रदक्षिणे कृत्य हरिं प्रणम्य दत्त्वा बलिं सत्र पुरन्दरादयः जयध्वनि कृत्य सुपस्तवर्षिणोम् ययो सुरा सौख्यता त्रिविस्तपम् कृष्णाभिषेकस्य कथां शृणोति यो तस्मेधा विवृताधिकं फलम् प्राप्नोति राजेन्द्र स एव भूयसः परम पदम याति परस्य वेदसः। एक बड़ी अद्भुत कथा है गोवर्धन के महात्म्य की, ये शायद किसी ने सुनी हो। ये बड़ी विचित्र कथा है। तो नारद जी बताते हैं कि इस विषय में पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना ऋण वसूल करने के लिए मथुरापुरी में आया। कहां से? गोदावरी से आया। अपना कार्य पूरा करके वो अपने घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। वहां से उसने एक गोल पत्थर ले लिया। गोल पत्थर ऐसे ले लिया कि अरे अच्छा लगता है, गोल पत्थर है ये। उसने कुछ महात्मा नहीं समझा। धीरे धीरे वन से होता हुआ जब ब्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसने अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह कैसा था? उसका मुंह छाती में था। उस राक्षस का मुंह सोचिए कितना। उसके तीन पैर थे और छह भुजाएं थीं, परंतु हाथ तीन ही थे। छह भुजाएं और हाथ तीन। ओठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची नाक थी उसकी। उसकी सात हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। कितना भयानक। रोए कैसे थे? कांटों जैसे रोए थे उसके। आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल थीं और दांत टेढ़े मेरे और भयंकर थे। वो राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर घुर शब्द करता हुआ वह खड़े ब्राह्मण के सामने आया। तब ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। ब्राह्मण ने क्या किया? उस पत्थर से मारा। उसके हाथ में वो पत्थर था तो वही मार दिया। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वो राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। सोचो क्या हुआ। उसके विशाल नेत्र कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। बनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी बैत लिए वो दूसरे कामदेव के समान दिखाई देने लगा और उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। और वो राक्षस समझ रहा है कि ब्राह्मण देवता ने मेरा उद्धार किया, जबकि इस ब्राह्मण को कुछ पता नहीं कि मैंने क्या किया। वो बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। वो ब्राह्मण से कहता है, हे महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। धन्यस्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ परत्राण परायण त्वया विमोचितो हम मे राक्षसत्वान् महामते पाषाण स्पर्श मात्रेण कल्याणम मे बभूवहां न कोऽपि मां मोचयितुं समर्थो हि त्वया विना। अब ब्राह्मण बोले, अरे मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूं। मैंने क्या किया? मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पत्थर के स्पर्श का क्या फल है ये भी मैं नहीं जानता। अतः तुम ही बताओ ये कौन सा पत्थर है, क्या है ये। तो उसने कहा कि श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कौन कह रहा है? वो राक्षस जो कि अभी भगवान का सखा बन गया है। वो बोला, गंधमादन की यात्रा करने से जो फल मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। सोचो केदार तीर्थ में 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वो फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। सोचो मलियाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा सोने का दान करने से ही मिल जाता है। और मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देने से जो फल मिलता है वो फल गिरिराज का दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। गिरिराज के समान पवित्र तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत और कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सिंह वाली 1 करोड़ गऊओं का दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे लाखों गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से ही सुलभ हो जाता है। सोचिए ऋषिमुख, सह्य पर्वत, देवगिरी की संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने से उससे करोड़ गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान कोई तीर्थ ना पहले कभी हुआ और ना भविष्य में होगा। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करे तो उसको 100 यज्ञों का फल मिलता है, परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला व्यक्ति करोड़ों यज्ञों के साक्षात पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वेंकटाचल, बारीधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है तो उससे बहुत अधिक फल मिलता है। गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करे उत्तम दक्षिणा देगा। चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी के दिन पयस्विनी में वैशाखी तृतीया को, पारियात्र पर्वत पर पूर्णिमा को, कुकुराचल पर द्वादशी के दिन, नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब करोड़ गुने हो जाते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन पर्वत में जो स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वो अनंत गुने हो जाते हैं। तो बहुत महिमा है गोवर्धन पर्वत की। जो भगवान श्री कृष्ण मन लगाकर गोविंद कुंड में स्नान करता है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उसमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसु यज्ञ भी नहीं है। तो हे ब्राह्मण, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन किया, स्पर्श किया और वहां स्नान किया। वो कौन कह रहा है? राक्षस कह रहा है उस ब्राह्मण से ना। अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो, उसको विश्वास नहीं है, वो तो ऐसे ही स्नान किया, स्नान करना था तो स्नान कर लिया है, और पर्वत से होके जा रहा था तो स्पर्श किया, दर्शन किया, तो वैसे ही। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा पापी था किंतु गोवर्धन शिला का स्पर्श मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने फिर प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? तो वो कहता है, अपनी आत्मकथा बताता है, ध्यान से सुनो। कहता है, पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था, अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई। जुआरों की गोष्ठी में सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर वेश्या में आसक्त हो गया और फिर मदिरा के मद से उन्मत्त होने लगा। इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी से बड़ी डांट फटकार मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला। मुझे डांटते फटकारते थे माँ बाप, तो जहर देकर के मैंने अपने माँ बाप को मार डाला। अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। समझ रहे हो? इस तरह उन सबके धन को हथियाकर उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। दक्षिण में जाकर निर्दयता पूर्वक लूट पाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में धकेल दिया। अंधेरे कुएं में धकेल करके मार डाला उस वेश्या को। डाकू तो मैं था, अतः मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। धन के लोभ से सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या की, क्षत्रियों की हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों में पहुंच गई। एक दिन मांस लाने के लिए, मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ा और सांप ने मुझे काट लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट महापापी को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया। वहां एक मनवंतर तक मुझे रहना पड़ा। 30 करोड़ साल तक कहां रहा मैं? कुंभी पाक नरक में रहा। इस तरह 84 लाख नरकों में, 84 लाख नरक हैं, 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा समय एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। 84 लाख साल, 84 लाख नरकों में एक एक साल रहा। फिर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ। क्या समझे? नरक से आने के बाद भी कोई सीधे मनुष्य थोड़ी बनता है। 10 बार सुअर और 100 बार व्याघ्र की योनि में जन्म हुआ, फिर 100 जन्मों तक ऊंट बना, और फिर 100 जन्मों तक भैंसा हुआ, इसके बाद 1000 जन्मों तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा, फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मुझे मिलकर मार डाला। इस तरह 10000 वर्ष बीतने पर जल शून्य जंगल में ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी मुझे देखा है। देखा कितना पाप था और कितना उसको भोगना पड़ा। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर मैं ब्रज में गया। कोई ब्रज जा रहा, शूद्र जा रहा था, तो उसके शरीर में घुस करके मैं ब्रज में आ गया। तो वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद निकले, कहां से? जमुना जी से निकले, और मुझे पीटने लगे। शूद्र के शरीर में आ गया था मैं, लेकिन वो जमुना जी जल से निकल करके मुझे पीटना शुरू कर दिया। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रज भूमि से इधर भाग आया, मैं यहां पर आ गया। तो ब्रजमंडल से बाहर में था और तुम आए मुझे। तब बहुत दिनों से मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहां आया। ब्रजमंडल में तो घुस नहीं सकता मैं, क्योंकि कृष्ण के पार्षदों से मुझे बहुत भय था, तो तुम्हें खाने के लिए मैं यहां आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। हे मुनि, मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। वो इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा, 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी वो रथ था। उसमें 10000 घोड़े जुते हुए थे, उससे 1000 पहियों के चलने की ध्वनि होती थी, लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और घंटिकाओं से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। फिर वह सिद्ध उस रथ में आरूढ़ होकर सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ श्री कृष्ण के लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण परम मनोहर है। वो ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराज के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। हे राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज की कथा तुम्हें सुनाई। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार सारथी ललिता विशाखा के हरे कृष्णा।